अरे आप त्योहार पर क्यों नाराज हो रही हैं? वो सब भी आना चाहते थे, पर मेहमान आ गए गांव से, तो नीतू जी ऋषि जी कैसे आते और नीलू ससुराल में आए मेहमान छोड़कर यहाँ कैसे आती, बताइए आप भी ना। सब समझती हैं फिर भी, अंकित जी कहते हैं। मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, इसलिए तो ज्यादा नहीं कहा। हाँ सुबह सब आ जाएंगे, मैंने तो साफ कह दिया, सुबह अगर गांव से आए मेहमान को भी यहाँ लेकर आना पड़े तो आ जाना, पर और कोई बहाना नहीं। त्योहार पर सब साथ हों तभी अच्छा लगता है ना, मंजू जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। आप टेंशन मत लीजिए, अब ना सही पर सुबह ना आए तो मैं खुद जाकर लेकर आऊँगा सबको, और फिर भी ना आए तो हम सब वहाँ जाकर होली खेल लेंगे। कुछ भी हो जाए, होली सेलिब्रेशन तो दोनों फैमिली मिलकर ही करेगी, अंकित जी हंसते हुए कहते हैं। सही कहा, ना कोई चलेगा बहाना, ना कोई कंजूसी, मिलकर खेलेंगे हम सब होली, मंजू जी बोलती हैं और फिर दोनों हंसते हैं। तभी वहाँ अक्षित आ जाता है। अक्षु अक्षित की पीठ पर चढ़ा होता है। अक्षु को नीचे उतारकर अक्षित ने अपने सामने खड़ा किया। तभी अंकित जी बोले, घुमाए पूरा पार्क, मिल गए सारे सवालों के जवाब, बता दिया ना अक्षित अक्षु को होलिका दहन के बारे में। अक्षित हंसते हुए, आप ना डरे डैड, फिलहाल सब बता दिया है, बाकी रेडी रहिए कब मेरे बेटे के मन में सवाल आ जाए और जवाब आपको देना पड़ जाए। मंजू जी, वो तो है। अंकित जी, देने ही पड़ेंगे, इसके सवालों से इसका डैड नहीं थकता, तो बेटा मैं भी डैड का डैड हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता थक जाऊँ। अक्षित ओके, और इधर उधर देखते हुए, संध्या कहाँ है? मंजू जी मुड़कर घर की ओर देखती, घर पर ही है, पूजा की थाली लाने गई हैं। अक्षित ओ, तभी अक्षु अंकित जी का हाथ पकड़कर उनके चेहरे की ओर देखते कहता है, दादू यहाँ होलिका कहाँ है? अंकित जी मंजू जी की ओर देखते, ये रही? मंजू जी अंकित जी की ओर घूरते, क्या बोल रहे हैं आप? अक्षु ये तो मेरी दादी हैं, होलिका थोड़ी, वो अच्छी नहीं थी, ये अच्छी है, और आग में बैठेंगे तो जल जाएंगे। नहीं मेरी दादी नहीं बैठेंगे, नहीं है मेरी दादी होलिका, मंजू जी से लिपटते हुए अक्षु ने कहा। मंजू जी अक्षु के कंधे पर हाथ रखकर अंकित जी की ओर देखते, देखा मेरा बच्चा भी जानता है मैं होलिका नहीं हूँ। अंकित जी मैं मजाक कर रहा था, आप तो बहुत स्वीट हो, मंजू जी की गाल खींचते हुए। मंजू जी अंकित जी का हाथ हटाते हुए, शर्म कर लो, लोग हैं यहाँ, तो अपनी बीमी के साथ, किसी और के साथ नहीं। अक्षित से हाईफाई करते हुए अंकित जी हंसते हुए बोले। अक्षित भी हंस रहा होता है। तभी अक्षु मंजू जी की ओर देखते, दादी आप बताओ ना कौन बैठेगा इस आग में, कौन है वो होलिका या वो जादू से आएंगे? ये सुनकर अक्षित की ओर देखते मंजू जी बोली, तुमने बताया क्या है इसे? अक्षित मैंने तो प्रहलाद और होलिका वाली कहानी बताई कि क्यों होलिका दहन होता है। अंकित जी तो तुमने ये नहीं बताया कि अब कोई होलिका आग में नहीं बैठती है, अब सिर्फ हम लड़कियां ये सब जलाते हैं। अक्षित ना में सिर हिलाते हुए, नहीं पता था कुछ पूछेगा जरूर, पर ऐसा नहीं, और वो सब बताने के लिए दादा दादी हो ना, आप ना शुरू से अच्छे से बताइए अक्षु को, मुझे बताना नहीं आया, मैं तब तक संध्या को देख कर आता हूँ, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे आने में। ओके आप सवालों के जवाब दो अक्षु, पूछो बेटा पूछो, कहकर अक्षित हंसते हुए वहां से भाग जाता है। लो भाग गया पल्ला झाड़कर। अंकित जी अक्षित की ओर देखते बोले, बताओ ना वो बच्चा भी बैठेगा क्या आग में? अक्षु ने पूछा। अब हमें ही बताना पड़ेगा, मंजू जी ने कहा। चलिए वहाँ उस बेंच पर बैठकर अक्षु को सब बताते हैं, कहते दोनों अक्षु का हाथ पकड़कर बेंच की ओर ले जाते हैं। अक्षित हंसते हुए घर जाता है और मुड़कर वापस पार्क की ओर देखते, अक्षु के सवाल वाकई भारी रहने वाले हैं और आई नो मोम डैड हैंडल कर लेंगे। तभी अक्षित संध्या से टकरा जाता है और घूमकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। आउच, अक्षित ने अपनी कोहनी पकड़ते हुए कहा। अक्षित तुम्हारा ध्यान कहाँ है, देखकर नहीं चल सकते थे क्या, गिर गए ना, चोट लगी क्या? संध्या ने कहा। गिरा हूँ तो चोट तो लगेगी ही ना, कहते अक्षित ने संध्या की ओर देखा और ठीक उसके सामने खड़ी थी। चोट तो लगेगी ना सुनते ही संध्या नीचे बैठी और परेशान होते बोली, क्या कहाँ लगी है चोट, दिखाओ। संध्या अक्षित की कोहनी की ओर देख रही होती है, तभी अक्षित कोहनी पकड़ा हाथ अपने सीने पर यानी कि दिल पर रखते हुए, यहाँ मुस्कुराते हुए। संध्या हैरान होते, क्या बोल रहे हो, कुछ बोलने लायक भी छोड़ा है क्या तुमने? हाय कितनी प्यारी लग रही हो, ये खुले बाल, बालों में गजरा, बड़े बड़े झूमर टाइम झुमके, माथे पर टिमटिमाती बिंदी और माथे पर ये खूबसूरत सा टीका और ये सूट, हाय यार क्यों करती हो ऐसा, वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल हो, ये सब और करके क्यों मुझे मारने वाला जुल्म करती हो, मैं तो कब का मरमिटा हूँ तुम पर। संध्या ने लाल सूट पहना होता है जिस पर ग्रीन सा हैवी दुपट्टा अपने कंधे पर लिया होता है। खुले लंबे बालों पर संध्या ने आज गजरा लगाया था जिसकी मोगरे के फूलों की महक पूरे घर में फैली थी। माथे पर लगी छोटी सी बिंदी और मांग टीका और बालों की आती एक लट माथे पर बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। हाथ कांच की लाल हरी चूड़ियों से भरे थे, कानों में झुमके और गले में बस मंगलसूत्र, ये सब संध्या पर चार चांद लगाए हुए थे। अक्षत तो वैसे ही फिदा है संध्या पर आज तो मुंह से हाय निकलना और दिल पर हाथ रखकर क्यों सितम करती हो कहना लाजमी था अक्षत का। कमी तो वैसे ही कुछ नहीं संध्या में, और हद से ज्यादा खूबसूरत लगना समझो बेचारा अक्षत तो गया।
नजरें तो जनाब की वैसे भी कभी ना हटे, पर आज तो पलक भी ना झपके ऐसा हाल था। संध्या अपना हाथ गाल पर रखकर मुस्कुराते हुए अक्षित की सुन रही होती हो। अक्षित के कहते ही संध्या ने अक्षित के गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुम्हारी नौटंकी हो गई तो हो, उठ जाओ। जमीन पर पड़े रहने का इरादा है क्या? चलो उठो। हाथ से ऊपर की ओर इशारा करते हुए संध्या खुद भी खड़ी हो जाती है। संध्या नीचे से खड़ी हुई और अक्षित को उठने के लिए कहती है। तभी अक्षित ने संध्या का हाथ पकड़ लिया। मैडम, तुम्हें नौटंकी लग रही है? नौटंकी नहीं, आशिकी कहो। और नहीं तो क्या, इतनी भी मैं कोई हेमा मालिनी नहीं हूँ, संध्या ने अक्षित की ओर देखते बोला। ये देखकर संध्या हंस पड़ती है और तुम भी ना कहते अक्षित से अपना हाथ छुड़ाती है और अक्षित को चलो अब उठो बोलती है। हाथ तो दो, अक्षित ने अपना हाथ संध्या की ओर करते कहा। संध्या अक्षित को अपना हाथ देती है। अक्षित संध्या का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। संध्या वहां से डाइनिंग टेबल की ओर जाती है, अक्षित संध्या के पीछे जाते हुए। अरे सच्ची में कहा, कमाल की लग रही हो। हाँ तो मैंने कब कहा कि झूठ बोल रहे हो, संध्या कहती है। ओहो तो भाव खा रही हो तुम, अक्षित बोली। तभी संध्या रुक जाती है और मुड़कर अपनी कमर पर हाथ टिकाते हुए, ओ मैं भाव खाती हूँ, बताना जरा कब खाया और तुमने ये कहा क्यों? क्रमशः